അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ കാന നബിയ്യൻ വ ആദമു ബൈനൽ മായ വത്തീൻ വ അലാ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി അജ്മാഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ഫഊസു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹു വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലാ നബി يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم آج ہماری نشست کا عنوان ہے فتنوں کی نشاندہی یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑی توجہ سے آپ حضرات سماعت فرمائیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کرنٹ ایشو پر گفتگو کی جائے تاکہ جو حالات گزر رہے ہیں اور ہم سب اس سے دوچار ہیں ان تمام چیزوں سے باخبر رہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں فتنوں کی نشاندہی فرمائی، اور ظاہر ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی نشاندہی فرما دیں وہ ہو کر رہے گی۔ کوئی ایک خبر، کوئی ایک بات جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت سے نکلی غلط نہیں ہو سکتی، پتھر کی لکیر ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں، ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت رکھتے ہیں، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، آئمہ مجتہدین، ان سب کا دامن ہمارے ہاتھ میں اور ان سب سے محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دور میں کون کون سے فتنے ہیں جو سر اٹھا رہے ہیں۔ فتنہ خود نہیں کہے گا کہ وہ فتنہ ہے، کبھی ایسا ہوگا کہ وہ کہے کہ جی میں ہی فتنہ ہوں؟ منافق نہیں کہے گا میں منافق ہوں، دشمن دوست کے روپ میں آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ فتنہ جو ہے وہ بڑے امن پسند بن کر اور بہت ہی میٹھا بن کر وہ آپ کے پیٹ میں چھری گھوپے گا، آپ کے عقائد کو متزلزل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے اس دور میں ہمیں بڑا چوکنا رہنا ہے، باخبر رہنا ہے کہ کون ہے جو ہمارے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا، کون ہے جو ہماری عقیدت اور محبت جو ان بزرگان دین کے ساتھ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ہے، ان سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کر رہا۔ اب ایک چیز تو ہوتی ہے نا کہ آدمی آ کر گفتگو کرے، مناظرہ کرے اور پھر آپ کو گمراہ کرے، اور ایک چیز ہوتی ہے سلو پائزن، زہر، زہر ہوتا ہے نا، دے دیا آہستہ آہستہ آدمی مر جاتا خاموشی کے ساتھ۔ ایک ہے نا تلوار سے مار دینا، گردن کاٹ دی، فائر کر دیا، ختم کر دیا، کلیشن کوب سے مار دیا، ریوالور سے مار دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، ڈنڈے مار کے مار دیا۔ ایک تو یہ ہے نا، پتہ چل جاتا ہے مارنے والا کون ہے۔ اور ایک طریقہ بڑا خطرناک ہے، خاموشی سے زہر دے دیا، کسی کو پان میں دے دیا، کسی کو کھانے میں دے دیا، کسی کو کسی چیز میں دے دیا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کس نے مارا، پتہ نہیں چلتا کہ کون قاتل ہے، آدمی مر گیا، اس کا کام ہو گیا۔ تو یہ تو ظاہری موت ہے۔ ایک ہے عقائد کی موت، عقائد کو ختم کر دینا، راہ سے بے راہ کر دینا، اور یہ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، یوٹیوب پر، واٹس اپ پر، فیس بک پر، آپ تمام لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک شوشہ چھوڑ دیا، ایک جملہ لکھ دیا، اسی سے آدمی گمراہ ہو گیا۔ مثلا اب میں ان چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ایک جملہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا دیواروں پر، پمفلیٹ پر، اسکولوں پر، ہر جگہ وہ بنا کے چھاپ کے لگا دیا سب جگہ، یا صرف یا اللہ مدد، یہ بھی ایک جملہ لکھا ہوا۔ اب اگر کوئی پوچھے تو کیا کہتے ہیں، ہاں بھائی مدد تو صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے نا، तुम अगर अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से मदद मांगोगे तो ये तो शिर्क है, और तुम मुशरिक हो गए, और मुशरिक हो गए तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म तुमने कर दिया, तुम तो इस्लाम से खारिज हो गए, मोमिन मुसलमान नहीं रहे। यानी जुमला सिर्फ एक है, भोले भाले सुन्नियों को गुमराह करने के लिए एक शोशा छोड़ दिया। अब जिसको नहीं पता वो यही कहेगा। अब कहते हैं हमारे लिए अल्लाह काफी है, क्या मतलब इनको रसूल की जरूरत ही नहीं है। मसला यही है ना, हमारे लिए अल्लाह काफी है, यानी बस अल्लाह काफी है और इनको किसी की जरूरत नहीं, ना किसी नबी की, ना किसी रसूल की, ना गौस की, ना कुतुब की, ना अब्दाल की, बुजुर्गान दीन की, किसी की जरूरत नहीं, इनके लिए अल्लाह काफी है। अब हमारा मसला क्या है, जब हमारे सामने कोई ऐसा जुमला आए, एक कसौटी हमारे पास है, साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनकी पूरी पाकीजा जिंदगी हमारे पास मौजूद है, ताबेईन की जिंदगी मौजूद है, तबे ताबेईन की मौजूद है, बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की मौजूद है, कोई ऐसा मसला हो, कोई जुमला हो, कोई लफ्ज हो, फौरन हम ऊपर देखेंगे, क्या किसी सहाबी ने ऐसा कहा था, उनसे बढ़कर मवाहिद कौन था, उनसे बढ़कर अल्लाह को चाहने वाला कौन था, उनसे बढ़कर अल्लाह की इबादत इताअत करने वाला कौन था, किसी साहबी ने कहा कि हमारे लिए अल्लाह काफी है। अब ये जगह जगह लिख रहे हैं हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है, पंफलेट छाप रहे, स्टिकर लगा रहे हैं। आओ सबसे पहले उस शख्सियत को देखो कि जो बादल अंबिया सबसे अफजल है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, अफजलुल खल्क बादल अंबिया बिततहकीक, अफजलुल खल्क अंबिया के बाद सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन। मशहूर वाक्य आपने सुना है, उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं। जंग तबू का मौका था, सरकार ने ऐलान फरमाया, साहबा अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सामान ले आए, कोई दिरहम और दीनार ले आया, कोई सामान ले आया, कोई कोई चीज ले आया, जिसकी जैसी हैसियत से ले आया। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुल का कुल सामान लेकर आ गए। सरकार ने पूछा अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी, ये भी कह सकते थे अल्लाह काफी, कह सकते थे ना, नहीं, अल्लाह और उसका रसूल काफी है। सहाबी रसूल अपने कौल से और अमल से बता रहे हैं कि रसूल को छोड़कर खुदा तक पहुंचना नामुमकिन है। ये कहते नहीं जी हमारे लिए अल्लाह काफी है, और जानशी ने रसूल फरमा रहे मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी। यहीं से पता चल गया कि ये जुमला ही गलत है, ये जुमला ही गलत है, और जिसने लिखा लोगों को गुमराह करने के लिए लिखा। हम ये नहीं कहते कि माजल्लाह सुम्मा माजल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला कुछ नहीं कर सकता, वो कादिर और कदीर है, सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में है, वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन देता नबी के वसीले से। कुरान को नाजिल कर दिया जाता बैतुल्लाह की छत पर, लोगों कुरान उठाओ इसको पढ़ लो हिदायत हासिल कर लो, नहीं, मैं पहले कुरान को नहीं भेजूंगा, उससे पहले अपने महबूब को भेजूंगा, महबूब आप जाइए 40 साल इनमें रहिए और इन्हीं की जबान से सादिक और अमीन मैं कहलवा दूंगा आपको। जब ये आपको सच्चा कहते रहेंगे, अमानतदार कहते रहेंगे, दयानतदार कहते रहेंगे, 40 साल तक आपकी सदाकत और अमानत और दयानत की गवाही देंगे, तब मैं कहूंगा अब महबूब अब मेरी वहदानियत का ऐलान कीजिए, अब आप फरमा दीजिए कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, क्या मतलब बगैर रसूल की सीरत के, बगैर गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने के कुरान नहीं समझ सकते, और कोई दावा करे नामुमकिन है। तो यहीं से पता चल गया कि यह कहना कि हमारे लिए अल्लाह काफी है, यह जुमला ही गलत है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान में अल्लाह और उसका रसूल काफी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कभी भी हिदायत हासिल नहीं कर सकते और कभी भी खुदा तक नहीं पहुंच सकते। और कितनी हैरत की बात है, उनसे यह पूछो, अब ये मुख्तलिफ बातें करते ना, रसूल नहीं जानते, दीवार पीछे का इल्म नहीं था, माजल्ला इल्म गैब नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये बताओ तुम्हें अल्लाह का पता किसने बताया? हमें पता था कि अल्लाह मौजूद है, किसने कहा कि अल्लाह मौजूद है? कहते जी हमारे बाप ने, अच्छा उनको किसने बताया, उनके बाप ने, उनको किसने बताया, उनके बाप ने, पहुंचोगे वहीं। पहुंचोगे वहीं। पहले बताने वाले हुजूर अलैहिस्सलाम हैं, वो ना बताते कि अल्लाह ताला मौजूद है, हमें कैसे पता था कि मौजूद। अरे दुनिया कुफ्र और शिर्क की गुमराही में भटक रही थी, 360 खुदा बना रखे थे, ये बारिश बरसाने का है तो ये हवा चलाने का है, ये रिजक देने का है, ये मुसीबतें दूर करने का है, हर चीज का अलग खुदा, हर चीज का अलग खुदा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया उन खुदाओं को मत पूजो जिनको तुमने बनाया है, उस खुदा के सामने झुको जिसने तुमको बनाया। अरे ये कैसा खुदा है कि बंदा उसको बना रहा। अरे खुदा की शान तो ये है कि वो बंदों को तखलीक करता है, तुम अपने हाथ से बनाकर खुद झुक जाते हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हीं के दम से, उन्हीं के जिक्र से, उन्हीं की वजह से खुदा मिला, रहमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके। तो जिनके सदके सब कुछ मिल रहा है सब ले लेके उन्हीं को छोड़ दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफी है। अरे अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो पता ही नहीं चलता, दुनिया जहालत के अंधेरों में भटक रही, ये खुदा है वो खुदा है, सूरज निकला कर हाँ ये खुदा, वो गुरूब होके करे नहीं ये नहीं है, चांद निकला करे ये खुदा है, वो ढल गया अच्छा ये नहीं है, समंदरों को कह रहे, ये इंसान की हालत थी, इतनी जहालत थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने इंसान को इंसानियत के मकाम पर पहुंचा दिया और बता दिया तुम्हारा सर जो है ये कोई मामूली नहीं है कि हर एक के सामने झुक जाए, इन दुनिया वालों के सामने, इन बुतों के सामने, इन दरख्तों के सामने, चांद और सूरज के सामने ये सर ना झुके, अगर झुके तो सिर्फ खालिके कायनात के सामने झुके। वही जात ऐसी है जिसके सामने तुम सर को झुका सकते हो, वही खालिक है, मालिक है, राजिक है, उसी के सामने झुकना। अब ये कहते नहीं जी हमारे लिए अल्लाह काफी। दूसरा जुमला, सिर्फ या अल्लाह मदद, यानी कि मैं ऐसी चीजें बता दूं जिससे आप समझ जाएंगे कि ये फितने हैं। एक स्पीकर है, सिर्फ या अल्लाह मदद। अब सिर्फ का क्या मतलब है, अगर ये भी लिखते ना कि या अल्लाह मदद, तुमने कहा ठीक है हम भी अल्लाह से मदद मांगते। सिर्फ, सिर्फ का मतलब क्या हुआ, सिर्फ का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, यही मकसद हुआ ना। यानी सादा सी जबान में, सादा उर्दू में, आम फहम अल्फाज में आदमी यही समझेगा, सिर्फ या अल्लाह मदद, इसके स्टीकर लगे हुए जगह जगह जगह, तो आदमी पढ़ेगा अच्छा इसका मकसद यह है कि अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए और किसी से नहीं मांगनी चाहिए। गैरुल्लाह, गैरुल्लाह का माना क्या है, अल्लाह के सिवा, गैर का माना सिवा, गैरुल्लाह अल्लाह के सिवा। अब अल्लाह के सिवा कौन है, नबीयीन अल्लाह के सिवा, सिद्दीकीन अल्लाह के सिवा, शोहदा अल्लाह के सिवा, सालेहीन अल्लाह के सिवा, आइम्मा मुश्तहिदीन अल्लाह के सिवा, बुजुर्गान दीन अल्लाह के सिवा, औलिया कामिरीन अल्लाह के सिवा। अरे अल्लाह के अलावा जितने भी हैं सब अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा जितने अल्लाह के सिवा हो गए ना, इसका मतलब है रसूल जितने भी आए वो सब अल्लाह के सिवा। सिवा का मतलब यह ना कि अल्लाह के अलावा जितने भी हैं किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, यही मकसद है ना जुमले का, मकसद यह। और यही गुमराह करने के लिए है, सीधे साधे लोगों को पकड़ के देखो भाई अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा तो मांग रहे हो, तो कुरान तो कह रहा है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीयिन वला नसीर, नहीं है तुम्हारा कोई दोस्त ना मददगार अल्लाह के सिवा। देखो हम तो कुरान को लेकर आ, हम तो कुरान लेकर आ रहे हैं, अब जाहिर है कुरान का इनकार कौन करे, हर आदमी मानता है ना, हाँ भाई कुरान की आयत है, तर्जुमा भी दिखा देंगे, देखो तुम्हारे लोगों ने तर्जुमा किया, आप कहेंगे हाँ जी ये तो बहुत अच्छी बात। हम कहते अच्छा ये है कुरान की और आयतें भी देखो, अच्छा अब इनका क्या अकीदा है और किस तरह गुमराह करते हैं। पहले लिख दिया सिर्फ या अल्लाह मदद, यानी अल्लाह के सिवा मदद नहीं मांगनी चाहिए। अब अगर इनसे पूछो कहेंगे जो अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगे वो मुशरिक है, जिसने भी मदद मांगी ना मुशरिक। हमने कहा अच्छा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को पुकार रहे, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है अल्लाह के रास्ते में मेरी मदद करे, कौन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किससे कह रहे हैं, अपने हवारियों से, अपने साथियों से। अब बताओ नबी ने अल्लाह के सिवा मदद मांगी या नहीं मांगी, मांगी ना, और कुरान है और उन हवारियों ने क्या कहा, नाहनो अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के रास्ते में आपकी मदद करने वाले। नबी मदद मांग रहा है और जिनसे मांग रहा है वो कहते हैं हां हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो अब इनका फतवा लगेगा हजरत ईसा अलैहि सलाम पर, माज अल्लाह। ये कहते हैं ना, जो भी अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगे मुशरिक है। अब नबी ने मदद मांगी नहीं मांगी, हजरत ईसा अलैहि सलाम मदद मांग रहे हैं। कहने का मकसद ये है, अगर मुस्ताने हकीकी समझ कर मदद मांगे तब शिर्क होगा। बात समझ में आई? हकीकी मददगार किसी को समझकर उससे मदद मांगी जाए तब शिर्क होगा, वरना ये आलम असबाब है। हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं, हम सब एक दूसरे की मदद करते ना। अरे एक मामूली सी टेबल उठानी है, आप कहते हैं यार मेरी मदद करना, एक आदमी ने इधर से पकड़ ली, इधर से पकड़ ली, रख दी, होता ही नहीं होता। तो हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं, बीमार हो जाए तो डॉक्टर के मोहताज, मकान बनाना तो मजदूरों के मोहताज, नक्शा बनवाना तो इंजीनियर के मोहताज, मुकदमा लड़ना तो वकील के मोहताज। अरे हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं, सिर्फ एक जात है जो किसी के मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं, वो खालिक कायनात, उसको किसी की जरूरत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू अम्मा नबा। तो ये छोटे छोटे जुमले जो है ना, ये गुमराह कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद एक साहब हैं, उनका आपने देखा होगा YouTube पे अक्सर, इंजीनियर साहब, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। इस किस्म की बातें वो करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और वो आदमी अहले सुन्नत पर तनकीद कर रहा है, वहाबियों पे तनकीद कर रहा है, देवबंदियों पे तनकीद कर रहा है, अहले हदीस पे तनकीद कर रहा है। अरे किसी को छोड़ा नहीं तो फिर ये खुद है क्या? सोचने की बात है ना भाई, आदमी या तो अहले सुन्नत होगा या वहाबी होगा या देवबंदी होगा या अहले हदीस होगा या शिया होगा, अहले तशी, ये सारे फिरके हैं ना जो मारूफ हैं, किसी को नहीं छोड़ा। फला साहब ये करते हैं ये गलत है, उनकी बात ये अच्छी है ये गलत है, अहले हदीस ये करते हैं ये फला ये करते हैं। तुम हो क्या? किसी फिरके में ना होना ये भी खुद एक फिरका है, समझ आई बात? इस तरह भी लोग गुमराह, हम तो जी किसी में नहीं है, हम तो कुरान को, बस कुरान को देख रहे हैं, जैसे माजल्ला इन्हीं पे नाजिल हुआ है, इन्होंने सबसे ज्यादा समझा है और किसी ने तो समझा नहीं। नहीं जी नहीं, अहले सुन्नत जो है ये फला काम गलत कर रहे हैं, ये तबलीग जमात वाले देवबंदी ये काम गलत कर रहे हैं, ये शिया जो है ये काम गलत कर रहे हैं। क्या मतलब? हम सबसे सही है बाकी सारे गलत। याद रखो, अगर कोई ये कहे मैं तो किसी फिरके में नहीं, बहुत से लोग आते ना भाई आप क्या, नहीं जी नहीं, हम तो हम इस चक्कर में ही नहीं पड़ते, हम तो ना देवबंदी ना वहाबी ना अहले सुन्नत ना अहले हदीस ना शिया, हम तो कुछ नहीं। तो जो कुछ नहीं, किसी फिरके में किसी मसलक में ना होना खुद अलग एक फिरका, ये अलग एक फिरका है अकाइद के एतबार से देखो और जिस एतबार से भी देख लो। तो ये लोग बड़े खतरनाक है, इनसे बचो और इनकी गुफ्तगु सुनने से बचो। आप सुनेंगे खामखा आपका जहन खराब हो जाएगा। अब उसमें क्या, एक और जुमला है, कहां लिखा है, ये भी एक जुमला है, और ये जुमला इन्होंने लिखा नहीं, ये कहते हैं। आप कहें जी या नबी सलाम अलैक, कह रहे कहां लिखा है, खड़े होकर सलाम कहां लिखा है, किसी किताब में लिखा है कि खड़े होकर सलाम पढ़ो? किसी किताब में नहीं लिखा, तुम क्यों पढ़ रहे हो? किसी हदीस में लिखा भाई, तुम क्यों कर रहे हो? जितने अहले सुन्नत के मामूलात हैं, सोयम हो, दसवां, बीसवां, चालीसवां, फातिहा, उर्स, जो भी हमारे मामूलात हैं, कहां लिखा? अब इनको बताओ कहां लिखा। अच्छा, जहां लिखा है वहां मानते नहीं, जहां लिखा है वो तो मानेंगे नहीं। अब ये क्या कहते हैं, सहाबा ने नहीं किया, तुम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है ये सारे वो काम करते हैं जो सहाबा ने किए, और जो नहीं किए वो ये नहीं करते, ऐसा लगता है। सहाबा तो घोड़े पर सफर करते थे, आप गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं? आप भी एक घोड़ा ले लीजिए। सहाबा तो ऊंट पर सफर करते थे, आप भी एक ऊंट ले लीजिए। अभी चलोगे तो सुबह तक तो सदर पहुंच ही जाओगे। नहीं जी, सहाबा ने नहीं किया, हम नहीं करते। अरे बेवकूफ, इस्लाम ने बता दिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हराम था उसको हराम करार दे दिया, जो हलाल था उसको हलाल करार दे दिया, जो हराम था उसको हराम करार दे दिया, बता दिया ये जायज है ये नाजायज, ये हलाल ये हराम, सारी चीजें बता दी ना। अब तुम कौन सा फतवा लगाने आ गए कि ये नाजायज है, रसूल ने तो बताया नहीं। उसकी जुजियात हैं, उसकी तफसील है, उलमा ने बयान कर दी। नहीं, कहां लिखा है? उनसे सिर्फ हम एक जुमला कहते हैं, दलाइल तो बहुत है लेकिन उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं आप ये क्यों कर रहे हैं, कहां लिखा है, सहाबा ने किया, फला ने किया, फला। उनसे कहा ये बताओ, नबी पाक अलैहिस्सलाम वजू फरमाने के लिए बैठे, चेहरे मुबारक पर पानी डाला, पानी चेहरे मुबारक से जमीन की तरफ चला, सहाबा ने हाथ फैला दिए, चादर फैला दी, दामन फैला दिया, रुमाल फैला दिए, चेहरे मुबारक से पानी लगकर जमीन पर ना गिरने पाए, आशिकों ने अपने हाथों पे ले ली, अपने चादर पर, अपने अपने दामन पर ले लिया। अब पूछो सहाबा से कहां लिखा था, कुरान ने कहा था, कुरान की कोई आयत है ऐसी कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करे, पानी चेहरे मुबारक पर डाले या दस्ते मुबारक धोएं और पानी जमीन की तरफ चले तुम हाथों को फैला दो, कहां है कुरान ने? नहीं। पूछो सहाबा से कहां लिखा था, जवाब मिलेगा। अब पूछो कि किसने कहा था, जवाब मिलेगा इश्क ने कहा था, मोहब्बत ने कहा था, महबूब वुजू कर रहा है पानी जमीन पर ना गिरने। अरे इश्क तो दीवाना होता। अच्छा अब एक बात, अगर यह अमल गलत था तो हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोक देते, भाई जो गलत काम हुआ सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोका या नहीं रोका? छोटे से छोटा, अदना से अदना, बड़े से बड़ा कोई काम ऐसा जो हराम था, जो गलत था, जो इस्लाम के खिलाफ था, जो शरीयत के खिलाफ था, फौरन सरकार ने रोक दी, खबरदार नहीं करना उसी वक्त। और ये अमल, हुजूर वुजू फरमा रहे हैं, वो अपने हाथों को फैला रहे हैं, अपने दामन को, अपनी चादर को, अपने रुमाल को, पानी हाथों पर ले रहे, सरकार मुस्कुरा रहे, मना नहीं फरमा रहे। क्यों? हुजूर जानते हैं ये मेरे से मोहब्बत करने वाले आशिक हैं, इश्क की एक अदा है, ये तो मोहब्बत की बात है, मोहब्बत वाले करते हैं। और यही नहीं, जो करीब थे उनको तो पानी मिल गया, जो दूर थे वो क्या करते, जो दूर थे उन्होंने उस सहाबी के हाथ पर अपने हाथ को मला जिसके हाथ पर पानी गिरत, और फिर अपने चेहरों पर, अपने जिस्म पर मल दिया। ये है मोहब्बत रसूल। कहते कहां लिखा था या कहां लिखा है, पूछो उन सहाबा से कहां लिखा था, सरकार ने तो नहीं फरमाया था मैं वजू करूं तो मेरा पानी जमीन पर ना गिरने दो, कुरान ने तो नहीं कहा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करें तो पानी ना गिरने दो, किसने कहा? इश्क ने, मोहब्बत ने, जो सहाबा के दिल में रासिक हो चुकी थी, मोहब्बत ने कहा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं पानी नहीं गिरने दो। अब मैं सोचने लगा जमीन भी तो तरस रही होगी, अरे आशिकों एक बूंद मेरे ऊपर भी तो गिरने दो, तुम तो सारा ही पानी लेके जा रहे हो, तुम तो सारा पानी ले जा रहे हो। कहने का मकसद ये है कि छोटे छोटे जुमले जो है ना, ये आपको वो बताएंगे, या दीवारों पर लिखे हुए आपको नजर आएंगे, या रक्षा टैक्सी पर, बसों पर स्टिकर हमारे लिए अल्लाह काफी है, सिर्फ या अल्लाह मदद, इस किस्म के जुमले लिखे हुए नजर आएंगे, और जब आपसे गुफ्तगू करेंगे कहने कहां लिखा, साहबा ने तो ऐसा किया नहीं, फला ने तो ऐसा किया नहीं, कहां लिखा। तो इस किस्म की बातें जो है ना, ये सब गुमराह करने वाली। मसलन कुछ पढ़कर किसी पर दम किया, कहने इससे क्या होगा, इसमें कोई असर है? भाई अल्फाज हैं। कहते नहीं जी, अल्फाज में कोई असर नहीं, अल्फाज में असर नहीं। मैं पहले भी एक दफा बता चुका हूं, एक बुजुर्ग की खिदमत में एक साहब गए, जी ये कोई असर नहीं है अल्फाज में। उन्होंने कहा अच्छा असर नहीं है? कहा नहीं। उन्होंने कहा आप गधे हैं। गुस्सा आ गया एकदम, अरे मुझे गधा बना दिया, मैं इंसान, गुस्सा आ गया, ये कैसे आपने कहा? कहा असर हुआ या नहीं? असर हुआ, हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, अल्फाज में असर है। अरे जब बुरे अल्फाज में असर है तो अच्छे अल्फाज में असर नहीं होगा, कलाम इलाही में असर नहीं होगा, अल्फाज में असर है। अब आप देखें ना, किसी की आप तारीफ करें खुश होगा नहीं होगा, आप कहें ये मेरा शेर है, अल्फाज की तासीर बता रहा हूं, मेरा शेर है, कैसा खुश होगा, अरे हजरत ने मुझे शेर कहा। अब मैं कहता हूं ये मेरा कुत्ता है, मुंह का जोग्राफिया बदल जाएगा, ये क्या बात हुई जी, हमें कुत्ता बना दिया, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। असर है या नहीं? अल्फाज में असर है, नामों में असर है। असहाबे कहफ के नाम अगर लिखकर घर में लगा दिए जाएं तो बरकत हो जाए, क्यों? अल्लाह के महबूब बंदे, महबूबों के नामों में असर है, महबूबों के जिक्र में असर है। इसीलिए कहा जहां पर सालेहीन का जिक्र होता है रहमतों का नुजूल होता है। सालेहीन मौजूद नहीं, उनका जिक्र हो रहा है रहमत खुदाबंदी नाजिल हो रही। तो गौर करो, जब सालेहीन का जिक्र हो वहां रहमतें नाजिल हो, तो जहां सालेहीन आराम फरमा हो वहां कितनी रहमतें, वहां कितनी बरकतें। तो हमारा अकीदा तो यह है, अल्फाज असर रखते हैं, जब बुरे अल्फाज असर रखते हैं तो अच्छे अल्फाज भी असर रखते हैं। और जब आदमी अपनी जबान की हिफाजत करता है तो उसकी जबान से जो पाकीजा अल्फाज निकलते हैं उसी वक्त असर करते हैं। सहाबा की एक जमात कहीं गई सफर पे, रवाना हो गए, करते करते एक इलाके में पहुंचे। उन लोगों ने इनकी कोई मेहमान नवाजी नहीं की। अच्छा, अब क्या हुआ कि उनका एक सरदार था, उसको बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू काटे, उसका जहर फैल रहा है, तकलीफ हो रही, और उस वक्त उनके पास कोई ऐसी दवा या कोई हकीम ऐसा नहीं था कि जो इलाज करता। तो उन्होंने कहा कि ये जमात आई है, इनसे पूछो इनमें कोई दम करने वाला है। उस जमाने में दम होता। साहबा के पास आए, हमारे सरदार को एक बिच्छू ने काट लिया है, जहर फैल रहा है, तकलीफ है, दर्द है, कोई है आप में से जो दम कर दे? एक साहबी खड़े हुए, हां मैं करता। साहबा ने बड़े गौर से इनको देखा, दम करने जा रहे? हां मैं जा रहा। गए, जाकर दम किया, वो सही हो गया, वो ठीक हो गया, सेहतियाब हो गया, तकलीफ दूर हो गई। अच्छा, जब ये गए थे, इन्होंने कहा क्या दोगे दम के बदले, क्या दोगे? इन्होंने कहा बकरियों का रेवड़। कहा ठीक है दे दो। इन्होंने दम किया, सेहतियाब हो गई। सरदार ने कहा भाई हमने वादा किया था, मुझे सेहत हो गई, तकलीफ दूर हो गई, वो रेवड़ दे दो। पूरा रेवड़ लेकर आ गए। बुखारी की हदीस है ये, सही हदीस। अब रेवड़ लेकर आ गए। अब साहब ने कहा ये क्या किया, ये कहां से लिया है? कहा भाई मैंने दम किया था, उसके बदले उन्होंने रेवड़ दे दी, मैं लेकर आ गया। अब सहाबा में इख्तलाफ हो गया, कुछ कह रहे हैं जायज है, कुछ कह रहे हैं नाजायज। अरे दम करने का तुमने रेवड़ ले लिया, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया नहीं था। उनका चलो सरकार की बारगाह में जो वो कहेंगे वही कर लो। फिर सफर करते करते बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने पूछा क्या हुआ? हुजूर तो जानते हैं सर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हमारे मां बाप कुर्बान, फला इलाके में गए, इस तरह हुआ, सारा वाकया बयान कर दी। जो सरदार था उसको बिच्छू ने काट लिया, जहर फैलने लगा, तकलीफ हुई, वो पूछने के लिए आए, ये साहब चले गए ये। अच्छा, इन्होंने क्या किया? उनसे पूछा मैंने दम किया, तुमने क्या पढ़ के दम किया? सरकार ने फौरन ये पूछा क्या पढ़ के दम किया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, अल्लाह ने शिफा दे दी। उन्होंने इस दम के बदले उजरत के तौर पर मुझे ये बकरियों का रेवड़ दे दिया। अब साहबा देख रहे, अगर गलत होता हुजूर डांटते, खबरदार जाओ वापस करके आओ। सरकार मुस्कुराए, फरमाया तुम्हें किसने बताया कि ये सूरह शिफा भी है? तुम्हें किसने बताया कि ये सूरह शिफा भी है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सोचा कुरान की आयतें पढ़ के दम कर दिया, अल्लाह ने शिफा दे दी। हुजूर ने फरमाया ठीक है, जो तुमने किया, जो तुम्हें मिला, ये सही है, ये रख लो, इसमें से हमारा हिस्सा भी निकालो। पता ये चला कि कुरान में असर है, अल्फाज में असर है, आयात कुरानी में असर है, और असर उस वक्त तीर की तरह असर करता है जब जबान में भी असर हो। यह है ना। अब आप कहें जी हमने तो सूरह फातिहा पढ़ के दम की थी, असर नहीं हुआ। तो तुम तो सारा दिन झूठ बोलते रहते हो, गीबत करते हो, चुगली खाते हो, दिल आजारी करते हो, लोगों की फाहिश गोई। कुरान में बिला शुबा असर है, लेकिन पढ़ने वाले की जबान में भी असर हो, अगर वो अपनी जबान की हिफाजत करे, तो फिर ये असर इंजेक्शन की तरह लगता, तीर की तरह जाता। तो कहने का मकसद ये है, ये सारी चीजें असर रखती हैं। बुजुर्गाने दीन के नामों में असर है, ये भी याद रखी, जो अल्लाह के मुकर्रबीन हैं, बुजुर्गाने दीन औलिया कामिलीन। इसीलिए हमारे सिलसिले अशरफिया के बानी حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، کسی شہر میں جاؤ، وہاں کے بزرگوں کی زیارت کرو، ان سے ملاقات کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، اگر نہیں کر سکتے، ان کا وصال ہو گیا، تو ان کے مزارات کی زیارت کرو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے نام ہی یاد کر لو، اس میں بھی فائدہ ہو جائے، ان کے نام یاد کر لو، ناموں میں بھی اثر ہے، وہ اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اگر کسی مشکل وقت میں نام لے لو گے، اللہ ان کے ناموں کی برکت سے تمہاری پریشانی دور کر دے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں بس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو یہ جو جملے آپ کو لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں شکوک و شبات ہوں، اپنے علماء کی صحبت اختیار کیجئے، ان سے اس کے متعلق معلومات کیجئے، تاکہ آپ کے عقائد متزلزل نہ ہوں۔ عقائد متزلزل نہ ہوں، یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، چلو نہیں مان، ٹھیک ہے کر لیتے، نہیں کرتے، ہے نا، گیارہویں شریف کرو کہتے ہیں ہاں کر لیں گے، اگر نہ بھی کریں تو کیا حرج، میلاد منا لیں گے ہاں منا لیں گے، اگر نہیں منائیں گے تو کیا ہوگا، کوئی گناہ تھوڑی ہوگا، اگر غوث اعظم کی فاتح نہیں دلوائیں گے تو گناہ تھوڑی ہے، چھوڑو رہن دو، اگر امام حسین کی سبیل نہیں لگائیں گے تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، چھوڑ دو، اسی طرح کرتے 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 چھوڑتے جائیں گے، کرنے میں بھی ہاں نہ کرنے میں بھی ہاں، تو یہ معاملہ بھی ڈھل مل ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر، پکے بن جاؤ، نہیں کرنا ہے تو کریں گے، نہ کرنے میں کیا مسئلہ۔ تو یہ جب اس قسم کے جملے آتے ہیں نا، اور یہ شرک وغیرہ کی بات ہوتی ہے، تو پھر آدمی کا ذہن تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں شاید ہم غلط کر رہے ہیں، ہاں ہمارے باپ دادا بھی شاید غلط کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی تقاریر نہ سنیں، ان کی کتابیں نہ پڑھیں، اپنے علماء کی صحبت میں رہیے، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی محافل میں بیٹھیں، کوئی شکوک و شبات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں عقائد سے متعلق، فوراً جا کر اس کی اصلاح کر لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کسی چیز کو خراب کرنے میں دیر نہیں لگتی، صاف کرنے میں دیر لگتی۔ اب آپ صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں، کسی نے کیچڑ اٹھا کے پھینک دی، کوئی دیر لگی؟ ایک سیکنڈ نہیں لگا، پورا لباس خراب ہو گیا۔ خراب کرنے میں دیر نہیں لگی، اٹھایا پھینک دیا، سب لباس خراب، اور صاف کرنے میں آپ لباس اتاریں، اس کو دھوئیں، دھبا نہیں گیا، صابن ملے، پھر نہیں گیا تو اور کوئی کیمیکل لگائیں، رگڑ لائیں، صاف کر رہے ہیں، تب جا کے وہ دھبا دور ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ خراب کرنے میں دیر نہیں لگتی، صاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ان جملوں سے انسان کا ذہن، سنیوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، ان کے عقائد خراب کرتے ہیں، دو منٹ میں خراب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ہمیں صاف کرنے میں بڑی مشکل ہو، رگڑنا پڑتا ہے، دلائل دینے پڑتے ہیں، تب جا کے صاف ہوتا۔ تو اس لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ جاؤ ہی نہیں، سنو نہیں۔ تو یہ فتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے بچائے، امن اور عافیت میں رکھے، اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رکھے۔ انشاءاللہ ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، دنیاوی فتنوں سے بھی بچو گے، قبر کے فتنے سے بھی، اور انشاءاللہ حشر میں بھی سرخرو۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔